गुरु भक्ति योग। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में तुम आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। गुरु शिष्य को पग पग पर मार्गदर्शन कर विश्वनाथ भी एक रात्रि में सोया था। इतनी गूढ़ नींद जिसमें स्वप्नों की पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी, निद्रा के गहरे स्तर में वह था। उस स्तर पर उन्हें दिव्यानुभूति हुई। विश्वनाथ की पलकों तले एक दिव्य संसार उभर आया। इस परलोक में उन्होंने एक अलौकिक महापुरुष का दर्शन किया। उस महापुरुष का स्वरूप अत्यंत ममतामय था, अत्यंत करुणामय, मानो समस्त भावना का समग्र साक्षात रूप ही हो। विश्वनाथ ने बड़ी एकाग्रता से उनकी तरफ देखा। वे महापुरुष एक महाज्योति से आवृत थे। इतना प्रकाश उनके आभा मंडल से छिटक रहा था जैसे कई सूरज एक साथ प्रकट हो गए हो। एकाएक उन दिव्य विभूति ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, मानो विश्वनाथ को वे अपने पास बुला रहे हैं। तभी विश्वनाथ को जगाने के लिए बाहरी माया ने झटका दिया। वह दिव्यानुभूति के लोक से खींचकर उन्हें अपने माया जाल में वापस ले आई। विश्वनाथ की नींद टूट गई और वे जाग गए। इस रात के बाद विश्वनाथ बड़े बेचैन रहने लगे। उनका मन क्षोभ में खोया खोया रहता। एक द्वार जो सालों से बंद था, उस पर कोई दस्तक देकर अदृश्य हो गया। मानो सर्द रात्रियों में दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हुआ था, पर कुछ ही क्षणों में वह पुनः बादलों में छिप गया था। इस अजीब अवस्था में वे जूझ रहे थे, पर विश्वनाथ उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तड़प जग उठी कि कौन थे वे दिव्या अति दिव्य पुरुष महापुरुष जो मुझे इशारों से कहां बुला रहे थे, किस प्रयोजन से बुला रहे थे। अब मन में एक ही इच्छा रहती, काश दोबारा मुझे वैसे ही दिव्य अनुभूति हो जाए, एक बार फिर से उनके दर्शन हो जाए, या फिर एक बार असल में वे विभूति मेरे समक्ष आ जाए, प्रकट रूप में मुझे कहीं दिख जाए, किसी तरह से उनका सानिध्य प्राप्त करूं। वह अनुभव सत्य में परिणित हो जाए। इसी कश्मकश में समय व्यतीत होने लगा। जीवन मानो प्रश्न चिन्ह सा बन गया था। उन्हें इंतजार था तो बस उस पूर्ण विराम का, जहां से ये सब प्रश्न उत्तर के रूप में आ जाए। सांसारिक तौर पर तो विश्वनाथ रुतबे और ओहदे में काफी माननीय थे। नेपाल के स्वामित्व में जो लकड़ियों का विशाल गोदाम था, उसके सर्वोच्च अधिकारी थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संपन्न थे। व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों ही स्तरों पर विश्वनाथ का खास रुतबा था, परंतु उक्त अनुभूति के बाद वे अपनी सारी आन मान और शान को जैसे भूल ही बैठे थे। अब वे केवल एक सच्चे जिज्ञासु, सच्चे पिपासु बन चुके थे, यही उनकी पहचान थी। अब यह तो नियम है, जब इतनी सच्ची भावना हो, इतनी पक्की जिज्ञासा हो, तो उत्तर भी जरूर मिलता है। ईश्वर स्वयं ही संदेश बनकर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ यहां भी विश्वनाथ को अपने किसी परिचित से एक संदेश मिला कि कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहां एक संत रहते हैं। उनका नाम है ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, जो बहुत ही अद्भुत संत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे हमेशा समाधि के उच्चतम शिखर पर स्थित रहते हैं, परंतु इसके विपरीत जब वे भक्ति और अध्यात्म का संदेश देते हैं, तो जिज्ञासुओं से बिल्कुल मानसिक धरातल पर वे आ जाते हैं। इसी कारण से उनके सानिध्य में आया साधारण जन भी ज्ञान के अति गूढ़ रहस्यों को बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेता है। ठाकुर के बारे में सूचनाएं मिलते ही विश्वनाथ के हृदय में मानो एक जिज्ञासा उठी। उनको आत्मा स्पंदित हो गई, चेतना मानो चित्कार करने लगी, मुझे इनसे मिलना है, मुझे ठाकुर से जल्दी मिलना है। इसी विफलता के चलते विश्वनाथ अपना सारा काम समेटने लगे। ताकि जल्द से जल्द दक्षिणेश्वर रवाना हो सके। उधर दक्षिणेश्वर में भी अजब ही नजारा था। बच्चा अगर रोता है तो सात समंदर दूर बैठी मां के हृदय में पीड़ा होती ही है। इधर विश्वनाथ की आत्मा पल पल झंकृत हो रही थी, तो उस आत्मा के स्रोत तो वो परम आत्मा, वो सद्गुरु कैसे भला अनजान रहते। इधर विश्वनाथ के कदमों में तीव्रता आई तो उधर ठाकुर के इंतजार में भी तीव्रता बनने लगी। उस दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में ठाकुर विराजमान थे, कुछ शिष्यों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वे इतने अधीर हो गए कि अकस्मात अपनी ही बातों को काटते हुए बोले, जानते हो मेरे पास कप्तान आने वाला है। कप्तान यानी विश्वनाथ उपाध्याय। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कौन कप्तान? ठाकुर ने कहा, रे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसे शीघ्र ही मिलवाऊंगा। जानते हो कप्तान रोज धोती पहनकर आरती और पाठ करता है, इतनी पूजा करता है। पहले एक बत्ती वाले दीप से, फिर तीन बत्ती वाले दीप, और फिर कपूर जलाकर पूजा करता है। शिष्यों ने पूछा, ठाकुर आप तो इतना पूजा पाठ नहीं करते हो, नहीं हमें करने को कहते हो। आप ही तो कहा करते हो कि भक्ति तो भीतर की भावनाओं का खेल है।